بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کے سورہ زحا کی تلاوت اور انواد سے کریں گے۔ قاری ہیں ہاشم روغنی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحا والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة رب صدق اللہ العلی العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل و دیاوان ہے۔ سوگند ہے دن کی جب وہ چھا جائے اور رات کی جب اس کا سناٹا چھا جائے، اور ہے پیغمبر، آپ کے پالنہار نے آپ کو نہ تو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے اپرسن ہوا ہے، اور نشچے ہی پرلے آپ کے لیے سنسار سے اتم ہے، اور شیگری آپ کا پالنہار آپ کو اتنا پردان کرے گا کہ آپ پرسن ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو اناتھ پایا اور شرن نہیں دی، और आपको मार्ग से दूर पाया तो गंतव्य तक नहीं पहुंचाया, और आपको निर्धन पाया तो समृद्ध नहीं कर दिया। अतः अनाथ पर क्रोध न कीजिए और मांगने वाले को न झिड़किए, तथा अपने पालनहार की अनुकंपा का वर्णन करते रहिए।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। हमारे प्रसारण को आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9390 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। दोस्तों, हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। दोस्तों, आज शुक्रवार है, रजब की 23, इस्फंद माह की 6 और फरवरी की 25 तारीख। हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप विश्व समाचार सुनेंगे, उसके उपरांत राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। राजनीतिक चर्चा के उपरांत आप अपना मनपसंद कार्यक्रम सुनेंगे पत्र संसार, और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा विज्ञान की डगर। तो दोस्तों, ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा, और अभी आप कुछ क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनेंगे। अब आप रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी सेनाएं दाखिल हो गईं। ईरान और रूस के राष्ट्रपतियों की टेलीफोनी वार्ता, अहम मुद्दों पर बातचीत। यूक्रेन के राष्ट्रपति का बयान, कीव को अकेला छोड़ दिया गया। हिजाब विवाद के बाद अब सिख लड़की से पगड़ी उतारने को कहा गया। और अब आप विस्तार से अख्तर अब्बास से समाचार सुनिए। एसोसिएटेड प्रेस ने राजधानी कीव में राष्ट्रपति भवन के निकट भीषण गोलीबारी और झड़पों की खबरें दी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी सैनिकों के नियंत्रण की सूचना दी है। यूक्रेन के सैनिक 203 मिलीमीटर तोपखाने के साथ राजधानी कीव के सेंटर में तैनात हैं। बताया जाता है कि उत्तरी कीव से झड़पें धीरे धीरे मिंस्क की ओर बढ़ रही हैं। बताया जाता है कि क्षेत्र में ज्यादातर कार्रवाई रूस की वायुसेनाएं कर रही हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी सेनाएं घुस गई हैं और एक मेट्रो स्टेशन पर उनका कब्जा हो गया है। अल जजीरा चैनल ने खबर दी है कि रूसी सैनिक बख्तरबंद गाड़ियों से कीव के अपुलोन इलाके में घुस गए हैं और क्षेत्र में भीषण झड़पें हो रही हैं। इस्लामिक गणतंत्र ईरान की सरकार ने पूर्वी यूक्रेन की स्थिति और यूक्रेन रूस के बीच जंग पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान स्थिति नेटो की भड़काऊ स्थिति का परिणाम है, किंतु जंग किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। इसी मध्य ईरान और रूस के राष्ट्रपतियों ने युद्ध और क्षेत्र की ताजा स्थिति पर विचार विमर्श किया। ईरान सरकार के प्रवक्ता अली बहादुरी जहरोमी ने ट्वीट किया कि अमेरिका पर विश्वास सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा सकता और जंग किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। इसी मध्य इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति सईद इब्राहिम रईसी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने टेलीफोनी वार्ता करते हुए ताजा स्थिति पर बातचीत की। क्रेमलिन हाउस ने अपने बयान में कहा कि इस टेलीफोनी वार्ता में ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि पूर्वी यूक्रेन की ओर नेटो का दायरा फैलने की वजह से तनाव बढ़ा है। इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि नेटो का विस्तार विभिन्न क्षेत्रों में स्वाधीन देशों की सुरक्षा और शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। क्रेमलिन हाउस ने कहा कि ईरानी राष्ट्रपति ने नेटो की भड़काऊ कार्रवाइयों के बारे में रूस की चिंता को समझा। इस टेलीफोनी वार्ता में वियना वार्ता और परमाणु समझौते के बारे में भी बातचीत हुई। उधर ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव ने अपने ट्विटर संदेश में कहा कि पश्चिम को चाहिए कि वो यूक्रेन से पाठ सीखे। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली शमखानी ने कहा कि पूर्वी यूक्रेन में संकट होने की वजह से शेयर मार्केट में भारी गिरावट और ऊर्जा के मूल्यों में वृद्धि से पता चलता है कि दुनिया के आधे पूर्वी भाग में किसी भी प्रकार की अशांति और स्थिरता से पश्चिम के हितों को भारी नुकसान हो सकता है। श्री अली शमखानी ने कहा कि यूक्रेन संकट ऐसा पाठ हो सकता है जिससे नसीहत हासिल की जा सकती है। सीमा इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यूक्रेन की स्थिति पर नजर रखने के लिए एक विशेष सेल बनाई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीबजादे ने राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल 2 पर एक विशेष कार्यक्रम में कहा कि ईरान का विदेश मंत्रालय कई सप्ताह पहले से यूक्रेन की स्थिति पर गहरी नजर रखे हुए और उसका अनुमान सही सिद्ध हुआ। उन्होंने कहा कि ईरान के विदेश मंत्रालय में एक सेल बनाई गई है ताकि यूक्रेन की स्थिति का बहुत ही निकट से जायजा लिया जाए। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उसने युद्ध के दौरान रूस के 800 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री हन्ना मालियार का कहना है कि रूस के 7 एयरक्राफ्ट, 6 हेलीकॉप्टर, 30 टैंक को नष्ट किया गया है। यूक्रेन सरकार ने 16 से 60 साल के पुरुषों के देश छोड़ने पर रोक लगा दी है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यूक्रेन ने अपने 10,000 नागरिकों को मुकाबले के लिए राइफलें दी हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि रूस के अतिक्रमणकारी 50 सैनिक मारे गए, 7 युद्ध विमानों को गिरा दिया गया और 44 टैंकों को तबाह कर दिया गया। रूस यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने इसी प्रकार दावा किया कि इस देश के सैनिकों ने राजधानी कीव के निकट रूस के 2 हेलीकॉप्टरों को तबाह कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने ऐलान किया है कि इस देश की सेना ने यूक्रेन के निर्माणाधीन 74 सैनिक केंद्रों को निष्क्रिय कर दिया। समाचार एजेंसी इरना की रिपोर्ट के अनुसार कुशनकोफ ने गुरुवार को पत्रकारों से कहा कि रूस ने यूक्रेन के निर्माणाधीन 74 सैनिक प्रतिष्ठानों को निष्क्रिय बना दिया। इन सैन्य प्रतिष्ठानों में 11 एयरपोर्ट, 3 समुद्री सैन्य केंद्र, 18 रडार स्टेशन और S-300 एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पश्चिमी देशों की जबानी खर्च की आलोचना करते हुए कहा कि पश्चिम ने रूस से युद्ध में हमें अकेला छोड़ दिया। समाचार एजेंसी फार्स की रिपोर्ट के अनुसार व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने समूचे देश में रूस के खिलाफ हथियार उठा लेने का आदेश दिया और ट्विटर पर लिखा कि यूक्रेन अपनी सुरक्षा में अकेला रह गया। पश्चिम केवल उसके समर्थन की बात करता है जबकि वो बता रहा है कि उसने कीव को छोड़ दिया है। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इसके बाद एक टीवी भाषण में कहा कि रूस से संबंधित विध्वंसक गुट कीव में अपनी कार्रवाइयों में व्यस्त है और जो सूचना हमें है उसके आधार पर रूस का पहले नंबर का लक्ष्य मैं और दूसरे नंबर का लक्ष्य मेरा परिवार है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि उनका देश यूक्रेन में रूस से मुकाबले का इरादा नहीं रखता। उन्होंने कहा कि रूस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, वो डॉलर, यूरो और येन में लेन देन नहीं कर पाएगा। समाचार एजेंसी तस्नीम की रिपोर्ट के अनुसार जो बाइडेन ने गुरुवार को वाशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाया जाएगा। उन्होंने सबसे पहले कहा कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ ऐसा सैन्य हमला आरंभ किया जिसका औचित्य नहीं दर्शाया जा सकता और हमने इससे पहले बारंबार इस संबंध में चेतावनी दी थी। अमरीकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने ऐलान किया है कि अगले कुछ दिनों में वो जर्मनी में 7,000 सैनिकों को भेजेगा। समाचार एजेंसी फार्स की रिपोर्ट के अनुसार अमरीकी रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार की रात को घोषणा की कि यूक्रेन में लड़ाई में वृद्धि हो जाने के दृष्टिगत अपने 7,000 सैनिकों को यूरोप भेजा जाएगा। सीएनएन की साइट के अनुसार यूक्रेन में रूसी कार्रवाइयों के बारे में अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के भाषण देने के बाद पेंटागन ने एक अधिकारी ने कहा कि 7,000 अमरीकी सैनिक जर्मनी जाएंगे और इन सैनिकों को जर्मनी में तैनात किया जाएगा ताकि वे नेटो के सदस्य देशों की रक्षा करें और रूस के हमलों के मुकाबले में रोधक की भूमि निभाएं और आशा है कि इन सैनिकों को अगले कुछ दिनों में रवाना किया जाएगा। یہ سماچار ریڈیو تہران سے پرسارت کیے جا رہے ہیں۔ برٹن نے روس کی نیت پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اس کی یوجنا پورے یوکرین پر ہی قبضہ کر لینے کی ہے۔ برٹن کے رکشا منتری بین والس نے شکروار کو کہا کہ روس کی منشا یہ ہے کہ پورے یوکرین پر قبضہ جما لے، لیکن وہ یدھ سے پہلے دن اس کوشش میں اسفل ہوتا دکھائی دیا۔ اس سے پہلے گروار کو برٹش پردھان منتری بوریس جانسن نے بھی روس اور پوتین پر زوردار حملہ کیا تھا۔ جانسن نے کہا تھا کہ پوتین روس کے تاناشاہ ہیں اور اس حملے سے انہوں نے نیموں کا الگھن کیا ہے۔ فرانس کے رکشا منتری کا کہنا ہے کہ یورپ اور امریکہ سے کوئی بھی روس کے ساتھ سیدھی جنگ نہیں چاہتا۔ ادھر روسی سنسد نے کہا ہے کہ روسی راشٹرپتی ولادیمیر پوتین نے یوکرین میں سینا آپریشن کا آدیش دے کر وشو یدھ کا راستہ روک دیا ہے۔ روسی سنسد جمعہ کے اسپیکر نے یوکرین کے راشٹرپتی ولادیمیر زیلنسکی کے راشٹرپتی ہونے کی حیثیت سے تین بڑی غلطیاں کی ہیں۔ معاف کیجیے گا، روسی سنسد ڈیوما کے اسپیکر نے کہا کہ یوکرین کے راشٹرپتی ولادیمیر زیلنسکی نے راشٹرپتی ہونے کی حیثیت سے تین بڑی غلطیاں کی ہیں اور سوتنتر نیتی نہ اپنانا ان میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین جیسے دیش کو امریکہ کے سامنے جھکنے اور امریکہ اور یوروپ پر بھروسہ کرنے کے بجائے سوتنتر نیتی اپنانی چاہیے تھی، لیکن راشٹرپتی زیلنسکی نے یوکرینی جنتا کے ہتوں کو مٹی میں ملا دیا۔ حجاب وواد پر کرناٹک ہائی کورٹ کے انتریم آدیش کے بعد راجیہ کی راجدھانی بنگلورو کے ایک کالج میں امرت دھاری سکھ لڑکی کو پگڑی ہٹانے کو کہنے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ کورٹ نے اپنے حالیہ انتریم آدیش میں حجاب وواد سے سمبندھت سبھی یاچکاؤں پر نرنے ہونے تک راجیہ کے سبھی ودیارتھیوں کے ککشا کے بھیتر بھگوا شال، اسکارف، حجاب اور کسی بھی دھارمک پہچان کو دھارن کرنے پر روک لگائی ہے۔ کالج کے ادھیکاریوں نے کہا ہے کہ 16 فروری کو جب دوبارہ شیکشنک سنستھان کھلے تو انہوں نے ودیارتھیوں کو عدالت کے آدیش کے بارے میں سوچت کیا۔ حالانکہ پری یونیورسٹی شکشا اپ ندیشک نے سپتاہ کے شروعات میں کالج کے اپنے دورے کے دوران حجاب پہن کر کالج آئی لڑکیوں کے ایک سموہ کو عدالت کے آدیش کے بارے میں سوچت کیا اور ان سے اس کا پالن کرنے کو کہا۔ ان لڑکیوں نے مانگ کی کہ سکھ سمودائے سمیت کسی بھی دھرم کی لڑکی کو دھارمک چن دھارن کرنے کی انومتی نہیں دی جانی چاہیے۔ اس کے بعد کالج نے سکھ لڑکی کے پتا سے سمپرک کیا اور انہیں عدالت کے آدیش اور اس کا پالن کرنے کی آوشیکتا کے بارے میں بتایا۔ ہمانی سینا نے اعلان کیا ہے کہ اس نے سنیکت عرب امارات کی وایو سینا کے ایک ڈرون ویمان کو دیش کے اتری بھاگ میں مار گرایا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے انتراشٹری سماچار سماپت ہوئے۔
یہ تہران ہے اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
دوستوں، میں ہوں رویش زیدی اور آپ کا سواگت ہے راجنیتک چرچا کے دینک کارکرم میں۔ آج کے کارکرم میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے یوکرین کی تازہ استھتی کے بارے میں اور پھر بات کریں گے یوکرین سنکٹ کو لے کر سنیکت راشٹر سنگھ میں جاری گتیویدھیوں کی اور انت میں چلیں گے بھارت، جہاں کشمیر کی تازہ استھتی کے بارے میں ہمارے سنواددات آپ کو بتائیں گے۔
بھارت پرشاست جموں کشمیر کی بھوتپورو مکھیہ منتری
تو دوستوں، سب سے پہلے چلتے ہیں ماسکو اور بات کرتے ہیں روس دوارا یوکرین پر کیے گئے حملوں کی تازہ استھتی کے بارے میں۔ اس سمبندھ میں ماسکو سے آئی آر آئی بی کے سنواددتا سید علی دارا بھی ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہی محمد مہندی کی آواز میں۔
ایک ایسی خبر جس نے دنیا میں بھوکمپ لا دیا۔ روس نے آخرکار یوکرین میں اپنا سین ابھیان آرمبھ کر دیا۔ سب سے پہلے روس کے راشٹرپتی ولادیمیر پوتین دیش کے راشٹریہ چینل پر آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ روس یوکرین کے خلاف سینی کاروائی کرنے جا رہا ہے۔
Народные республики Донбасса обратились к России.
Путин کہتے ہیں کہ دونباس کی جنتا اور سوئم سبھی بلوں ساتھ ہی دونیسک اور لوہانسک گنراجیوں نے روس سے تتکال سینی مدد مانگی تھی۔ ہم نے سنیکت راشٹر سنگھ کے آرٹیکل 51 اور فیڈریشن کاؤنسل کی انومتی کے بعد وشیش سینی آپریشن کا فیصلہ لیا۔ حالانکہ امریکہ اور نیٹو پچھلے کچھ ہفتوں سے یوکرین پر روس کے سمبھاوت حملے کی بات کر رہے تھے، لیکن حملے والے دن امریکہ اور یورپی دیشوں کی اور سے سامنے آنے والے بیانوں نے یہ درشا دیا کہ وہ روس کی کارروائی سے آشچرچکت تھے۔ وہیں یوکرین کے راشٹرپتی امریکہ، نیٹو، یورپی و پشمی دیشوں پر آروپ لگا رہے ہیں کہ مصیبت کی گھڑی میں انہوں نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ یوکرین کے راشٹرپتی زیلنسکی کہتے ہیں کہ یوکرین پر جب سے روس نے حملہ کیا تو ہم نے امریکہ سہت سبھی یورپی دیشوں اور کئی انیہ دیشوں سے بات کی، لیکن سب نے ہمیں کیول اور کیول آشواسن دیا اور کہا کہ ہم یوکرین کے لیے پرارتھنا کر رہے ہیں، جس کے بعد مجھے یہ وشواس ہو گیا کہ کوئی بھی ہماری مدد کرنے سامنے نہیں آئے گا۔ اسی بیچ بیلاروس کے راشٹرپتی نے یدھ کے آرمبھ میں ہی اپنے سینیہ پرمکھ کے ساتھ بیٹھک کی اور آدیش دیا کہ روسی سینا کے ساتھ مل کر وہ دونباس میں یوکرین کے خلاف کارروائی کریں۔ اس بیچ روسی سینا نے اپنے پہلے ہی حملے میں یوکرین کی کمر توڑ دی اور یوکرین کے نرماندھین 74 سینیہ پرتشٹھانوں کو نشکریہ بنا دیا۔ ان سینیہ پرتشٹھانوں میں 11 ایئرپورٹ، 3 سمندری سینک کیندر، 18 راڈار اسٹیشن اور S-300 ایئر ڈیفنس سسٹم شامل تھے۔ روسی سینا کے پروکتا نے بتایا کہ روسی سینا لگاتار اپنے نردھارت لکش کی اور بڑھ رہی ہے، جبکہ یوکرین کی سینا اپنے مورچوں کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہے۔ ایک اور جہاں روسی سینا یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ بہت آسانی سے آگے بڑھ رہی ہے، وہیں دوسری اور ایسا لگ نہیں رہا ہے، کیونکہ رپورٹروں کو یدھ کور کرنے میں بڑی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہیں یوکرین کی راجدھانی کیو سے لوگوں کے پلائن کا سلسلہ جاری ہے، ساتھ ہی بہت سارے لوگوں نے میٹرو اسٹیشن میں جا کر شرن لی ہے اور یدھ کے آرمبھ سے یوکرین میں رہنے والے لوگ لگاتار اپنے آپ کو سرکشت استھان پر پہنچانے کا پریاس کر رہے ہیں۔
The Donbass region.
روسی سینا کے ایک ادھیکاری کا کہنا ہے کہ یوکرین کا ڈیفنس سسٹم پوری طرح دھست ہو چکا ہے، سوئم سبھی بل بھی اب روسی سینا کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ وہیں یوکرین اور روس میں بڑھتے تناؤ کے بیچ ایشیائی شیئر بازار میں بھی بھاری گراوٹ دیکھی گئی، اس سے ایک بار پھر مندی سے ابھرتی ارتھ ویوستھاؤں کو جھٹکا لگ سکتا ہے۔ 22 فروری کو انتراشٹریہ بازار میں کچے تیل کی قیمت 7 سال میں سب سے اونچے استر پر پرتی بیرل 97.44 ڈالر پر پہنچ گئی ہے۔ اس کے بعد ایسی آشنکا جتائی جا رہی ہے کہ دنیا بھر میں تیل کی سپلائی چین پربھاوت ہو سکتی ہے۔ روس سعودی عرب کے بعد تیل نریات کرنے والا دنیا کا دوسرا سب سے بڑا دیش ہے۔ روس پراکرتک گیس کا سب سے بڑا اتپادک بھی ہے۔
سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو۔
اور اب چلتے ہیں نیو یارک اور بات کرتے ہیں یوکرین کے مدعے کو لے کر یو این کے مہا سچیو کے بیان اور سرکشا پریشد کے سمبھاوت پرستاؤ کے بارے میں۔ اس بارے میں سنیکت راشٹر سنگھ کاریالے سے آئی آر آئی بی کے سمواددتا کامران نجب زادے ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی اختر عباس کی آواز میں۔
یوکرین نے سنیکت راشٹر سنگھ کو پتر بھیجا ہے کہ روس کی یو این کی سدستا سماپت کی جائے۔ نیو یارک کی یاترا پر گئے یوکرین کے ودیش منتری نے سنیکت راشٹر سنگھ کے سدسیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ روس سے اپنے راجنیک سمبندھوں کو سماپت کریں۔
پریزیڈنٹ پوتین، سٹاپ یور ٹروپس فرام اٹیکنگ دی یوکرین۔
سنیکت راشٹر سنگھ کے مہا سچیو اینٹونیو گوٹیریس نے کہا ہے کہ میرا دل ٹوٹ گیا ہے، उन्होंने कहा कि युद्ध के भयानक परिणाम सामने आएंगे। गुटेरेस ने सीधे तौर पर पुतिन से अपील की है कि युद्ध समाप्त करें। यूएन में रूस के राजदूत का कहना है कि हम यूक्रेन से बातचीत के लिए तैयार हैं, केवल शर्त यह है कि वो नेटो की सदस्यता को भूल जाएं। मॉस्को का कहना है कि हम युद्ध कर रहे हैं ताकि विश्व युद्ध ना हो। यूएन में अमरीकी प्रतिनिधि सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ प्रस्ताव पारित कराने की कोशिश में है। सुरक्षा परिषद में वोटिंग होगी, तैयारी पूरी है। इस बीच फ्रांस और ब्रिटेन रूस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और उनका कहना है कि यूरोपीय इतिहास के नए चरण में प्रवेश कर गए हैं बहुत सारी गलतियों के साथ। वहीं चीन चुप है और लगातार कह रहा है कि संयम से काम लें, लेकिन ये बात सब जानते हैं कि उनका दिल किसके लिए धड़क रहा है। इस बीच सुरक्षा परिषद की बैठक में यूक्रेन और रूस के राजदूतों के बीच तीखी बहस भी हुई। दूसरी ओर तेल अविव द्वारा कीव का समर्थन किए जाने पर संयुक्त राष्ट्र संघ में रूस के प्रतिनिधि ने कहा कि मॉस्को गोलान हाइट्स में इसराइल की संप्रभुता को मान्यता नहीं देता। कुल मिलाकर संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की कमियों से भरी संरचना पहले से कहीं ज्यादा अपनी कमियों को दिखा रही है। अमेरिका सुरक्षा परिषद में जो प्रस्ताव रखने वाला है उसके अनुसार उसने मांग की है कि रूस बिना किसी शर्त के तुरंत ही यूक्रेन पर हमले बंद करके वहां से पूरी तरह निकल जाए। लेकिन रूस जो इस समय सुरक्षा परिषद के इस दौर का प्रमुख है और उसके पास वीटो का भी अधिकार है, तो ये स्पष्ट है कि वो इस प्रस्ताव को वीटो कर देगा।
और अब रुख करते हैं भारत का और बात करते हैं भारत प्रशासित कश्मीर में, जहां केंद्र सरकार कश्मीर में सब कुछ अच्छा होने का दावा कर रही है, वहीं इस राज्य की विपक्षी पार्टियां दिल्ली सरकार के सारे दावों को खारिज कर रही हैं। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं श्रीनगर से हमारे संवाददाता सिप्ते मोहम्मद हसन।
भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर की भूतपूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि नई दिल्ली ने जो नीतियां कश्मीर में अपनाई है उसका लक्ष्य कश्मीर के लोगों को एक दूसरे से लड़ाना है, और उन्होंने एक लक्ष्य अपने सामने रखा है, परंतु मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि वो उस लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को हमारे विशेष अख्तियार हमसे छीने गए और हमने इसका विरोध किया, परंतु जो रवैया हमारे साथ रखा गया वो विश्व और पूरे देश के सामने है। उन्होंने कहा कि हम देश के वासियों से ये प्रार्थना करते हैं कि वो बीजेपी के एजेंडे को देखें और कश्मीर के लोगों को भी देखें। उन्होंने कहा कि हमारा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने दिल से लगाने की जरूरत है, परंतु ऐसा नहीं किया जा रहा है और आए दिवस ऐसे कानून लाए जा रहे हैं जो कश्मीरियों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी भाजपा की नीतियां होंगी हम उसका विरोध भी करेंगे और उसका खंडन भी करेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारा ये मानना है कि गुपकार अलायंस एक साथ लड़ेंगे या नहीं, इस हवाले से एक बैठक होने जा रही है जिसमें निर्णय लिया जाएगा, परंतु मेरी जनता से ये अपील है कि वो गुपकार अलायंस के हक में ही अपने मत का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से नई दिल्ली को एक ऐसा जवाब मिलेगा जो उन्हें चाहिए है।
क्योंकि इनकी इतनी कोशिशें डिलिमिटेशन ये करना तोड़ फोड़ करना आपस में लड़ाना हिंदू मुसलमान को लड़ाना मुसलमान और मुसलमान को लड़ाना गुजर और पहाड़ी को लड़ाना मकसद ये है कि असेंबली में इनकी और जो इनके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनकी इतनी सीटें आए कि जो उन्होंने फैसला किया 5 अगस्त को उस पर वो मुहर डाल दे ताकि जो सुप्रीम कोर्ट में आपका केस है वो कमजोर हो जाए।
اس بیچ جموں کشمیر میں ہنسک گھٹناؤں کا کرم بھی جاری ہے. دکشنی کشمیر کے شوپیاں میں بھارتی سرکشا بلوں اور الگاؤں وادیوں کے بیچ ایک مٹ بھیڑ میں دو الگاؤں وادی چھاپا ماروں کے ہتاہت ہونے کی سوچنا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ آج تڑکے بھارتی سرکشا بلوں نے ایک وشیش سوچنا ملنے کے ترنت بعد گھیراؤ کیا اور تلاشی ابھیان آرمبھ کیا, جس کے بیچ گھیرے میں آئے الگاؤں وادیوں اور سرکشا بلوں کے بیچ ایک زبردست مٹ بھیڑ آرمبھ ہوئی جو کافی سمے تک جاری رہی. اس مٹ بھیڑ میں دو استھانیہ الگاؤں وادی چھاپا مار ہتاہت ہوئے, جن کا تعلق الگاؤں وادی سنگھن لشکر طیبہ سے بتایا گیا. ہتاہت ہوئے چھاپا ماروں کے نینترن سے اصل اور گولہ بارود بھی برآمد کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے. اس بیچ ایک بار پھر سری نگر کے اتہاسک جامع مسجد میں نماز جمعہ پر پرتبند جاری رہا اور آج بھی یہاں پر نماز جمعہ کی سبھا آیوجت نہیں ہوئی, جس پر دھارمک گٹھوں کے گٹھ بندھن متحدہ مجلس علماء نے کھید پرکٹ کیا ہے. سپتی محمد حسن, ریڈیو تہران, سری نگر.
دوستوں, اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا کا دینک کاریکرم یہیں سماپت ہوتا ہے. یہ ریڈیو تہران ہے, اسلامی گڑتنتری ایران کی آواز. دوستوں, ہماری آج کی سبھا کا انتم کاریکرم ہوگا وگیان کی ڈگر, لیکن اس سے پہلے پرستوت ہے کاریکرم پتر سنسار.
پتر سنسار.
دوستو, کاریکرم پتر سنسار میں آپ کا سواگت ہے. اپنی دیدی مریم مہردادی اور بھیا رویش زیدی کا سلام سویکار کیجیے.
دوستو, ہمیں آشا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے سکشل ہوں گے اور اپنا من پسند کاریکرم سننے کے لیے تیار ہوں گے.
اور میں بھی یہی آشا کرتا ہوں آپ سے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے بہت ہی اچھے ہوں گے, اور خاص کر جو ہے وہ آج کل ٹھنڈک جا رہی ہے دیدی,
اور گرمی آ رہی ہے.
ہاں, تو گرمی آ رہی ہے اور ہماری دیدی بھی کو بھی تھوڑی سی ٹھنڈک لگ گئی ہے, تو اس کے لیے بھی آپ جو ہے زیادہ بے چین نہ ہوئیے گا, لیکن جہاں بھی رہیے گا سرکشت رہیے گا. اور خاص کر دیدی, جو نئے نئے ویریئنٹ آ رہے ہیں کورونا کے اور جو نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں, اس سے اپنے آپ کو سرکشت رکھیے گا, بچے رہیے گا, اچھے رہیے گا, تاکہ ہمارا کاریکرم بھی سنتے رہیے گا.
جی, اور آج بھی ہم شروتاؤں کے ای میل اور کمنٹ شامل کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے کیسنگا اوڈیشا سے سریش اگروال کا یہ ای میل ہے. لکھتے ہیں کہ ساپتاہک کاریکرم پتر سنسار کے تحت پتروں ایوم پرتکریاؤں کے بیچ پیش سانسکرتک خبر میں ایران انتراشٹری ورت چتر مہوتسو پر دی گئی جانکاری سن کر سینے ویرائٹ کے 15th سنسکرن کو اچھی طرح سمجھنے کا موقع ملا. بعد میں نئے پریوگ کے طور پر سنوائی گئیں پریاگ راج کے شروتا بھائی دھیرج پرجاپتی تتھا پاکستان کے کچھ شروتا متروں کی آوازیں سن کر من پرفلت ہو اٹھا. دھنیواد پرستوتی کو اتنا خاص بنانے کے لیے.
دیدی, ایک چیز بہت ہی اچھی مجھے لگی سریش اگروال جی کی.
جی,
اور میں جو ہے وہ ڈائریکٹ آپ سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ نے بہت ہی باریکی سے اور بہت ہی دھیان سے ہمارے کاریکرم کو سنا ہے, اور ایک ایک چیز پر آپ نے اپنی ٹپڑی کی ہے, جس نے من جو ہے ہمارے من کو پرفلت کر دیا ہے. تو اس جب ہم بہت زیادہ پرفلت ہو جاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں تو ہاتھ جوڑ کر آپ کا دھنیواد کرتے ہیں. بہرحال آپ مجھے دیکھ تو پا نہیں رہے کہ میں نے ہاتھ اپنا جوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے,
لیکن
دیدی جو ہے وہ اس بات کو ضرور بتائیں گی کہ میں اپنا ہاتھ جوڑ کر آپ کا دھنیواد کرتا ہوں, اور آشا کرتا ہوں کہ آگے بھی آپ ہمارے کاریکرم کو اسی طرح سنتے رہیے گا.
جی, مرشید آباد پشچم بنگال سے متالی لسنرز کلب کے ادھیکش شیویندو پال لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی سیوا کو متالی لسنرز کلب کی طرف سے پیار بھرا نمسکار. میں ہندی سیوا ریڈیو تہران کا ایک نیمت شروتا ہوں. انہوں نے بنگالی میں لکھا ہے تھوڑا ویسے, یعنی نیمت کے جگہ وہ لکھتے ہیں نیومت شروتا, ایسے لکھتے ہیں. تو ریڈیو تہران ہندی سیوا کا انوشٹھان رات کا کاریکرم 9390 کلو ہرٹز پر سنتا ہوں. میرے علاقے کے بہت سے شروتا آپ کے کاریکرم سنتے ہیں. سماچار اور سبھی کاریکرم مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. آپ کا کاریکرم بہت اچھا ہے, ایران اور وشو کے بارے میں بہت ساری جانکاری ملتی ہے. میرے کلب کے لیے ایران سے وشیش سامگری بھیجنے کا अनुरोध करता हूँ।
पॉल साहब बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूँ और भालोभाषी भी कहता हूँ आपको, और आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और बिल्कुल ज़रूर जितनी भी सामग्री होगी हमारे पास वो सब आपके जो कमेटी है, जो आपका क्या है दीदी इनका
बिजनेस क्लब,
जो क्लब है आपका, उस तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। तो दीदी अब आगे का क्या कार्यक्रम है हमारा?
अभी पहले म्यूजिक जाएंगे, बाद में आपको
यानी एक ब्रेक लेंगे और फिर आपके पास आएंगे। तो चलते हैं, एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आपके पास आते हैं। तो दोस्तों और हमारे प्रिय श्रोताओं, हम चलते हैं दीदी के पास एक बार फिर और उनसे मालूम करते हैं कि आज उनके पिटारे में जो सांस्कृतिक पिटारा है उसके अंदर क्या है, तो दीदी हमें बताएंगी।
जी, आज हम जा रहे हैं समोनू बनाने और ये है ईरान के केंद्रीय नगर इस्फान के शारदा शहर में पारंपरिक तरीके से अंकुरित गेहूँ के सुनहरे दानों से बनाए जाने वाले समोनू के बारे में बता रहे हैं। ये इस देश की प्राचीन विरासत का हिस्सा है और समोनू बनाने की विधि घर के सभी परिवारों को एक जगह इकट्ठा होने का अवसर भी प्रदान करती है। समोनू बनाने का ये समारोह 500 वर्षों से चला आ रहा है और आज भी शारजा में ये प्रथा वैसे ही प्रचलित है। आज भी इसे पुराने जमाने की पद्धति से पकाया जाता है जिसमें जस्ते की कढ़ाई, पकाने के लिए लकड़ियों का उपयोग किया जाता है और साथ ही पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम तथा उनके परिवार वालों पर सलाम व सलवात भेजते हुए आरंभ करते हैं, विशेष रूप से उनकी बेटी हजरत फातिमा जहरा के लिए। इसे तबर्रुक के रूप में पकाया जाता है। समोनू एकमात्र ऐसा पौष्टिक आहार है जो पूरी तरह से पानी और आटे से तैयार किया जाता है। इसमें नमक या चीनी जैसे किसी अन्य चीज़ों को मिलाया नहीं जाता। समोनू का मीठा स्वाद गेहूं के सुनहरे दानों से ही होता है। सबसे पहले गेहूं को अंकुरित किया जाता है और इसके अंकुर तथा चोकर या भूसी को साथ में पीस लिया जाता है। जस्ते की कढ़ाई में कुछ मात्रा में आटा और पानी के साथ इस पीसे हुए मिश्रण को मिलाया जाता है। मिट्टी की भट्टी पर इस मिश्रण को तब तक हिलाना होता है जब तक कि पानी खत्म न हो जाए। इसे अच्छी तरह से भूरे रंग होने तक भून लिया जाता है और जब इसमें अच्छी सुगंध आने लगती है तब इसको फिर से पानी में पकाया जाता है, यानी थोड़ा सा पानी मिलाया जाता है और पानी को फिर से सुखाया जाता है। ये प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है। 18 घंटे के बाद मिश्रण को भाप देने के लिए कढ़ाई के ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा रखा जाता है, ऊपर एक जस्ते का ट्रे भी रखा जाता है और पवित्र कुरान की किताब, एक आईना, मोमबत्तियाँ, एक कंघी, चॉकलेट और पानी का एक बर्तन, इन सभी चीज़ों को फिर ट्रे के ऊपर रख दिया जाता है। समोनू को भाप बनने में 7 घंटे और लगते हैं और इस दौरान नीचे से जलाव लकड़ी हटा दी जाती है। शारजा में पारंपरिक समोनू पकाने की विधि अद्वितीय है और हर साल ठंड के मौसम में इस समारोह को मनाया जाता है।
दीदी बस कीजिए,
बहुत ही बड़ी, बहुत ज्यादा था लेकिन इससे लोगों को पता चलेगा कि
नहीं,
यहां
वो
पे
बिल्कुल आप सही करी, लेकिन जितना ज्यादा आप पढ़ती जा रही थी मेरे मुंह में उतना ही ज्यादा पानी आता जा रहा था।
अच्छा।
तो उस पानी को मैं खत्म करने के लिए चलते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो श्रोताओं देखिए, मैंने तो जो है अपने पानी को पी लिया है, इसलिए कि बहुत ही मज़ेदार ये हलवा होता है ईरान का और बहुत ही जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही पौष्टिक भी होता है।
बिल्कुल।
तो इस हलवे को ज़रूर एक मरतबा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं ट्राई कर सकते हैं तो दीदी अपना अपना एड्रेस हमको भेज दिएगा, दीदी आप तक ये हलवा ज़रूर भेजेंगी। दीदी कमेंट्स हैं उन लोगों के,
मैं
तो आप
इस बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन अब हम जाएंगे कमेंट्स की तरफ और सबसे पहले आप कुछ और ज़्यादा कहें। अगर वार्ता विफल हुई तो इसके जिम्मेदार अमेरिका और पश्चिम होंगे, विदेश मंत्री इस पर बहराम लिखते हैं। JCPOA की बैठकों में बातचीत के इस चरण में विरोधी पक्ष ब्लेम गेम शुरू कर रहे हैं और घिसा पीटा और बचकाने बयान का इस्तेमाल कर रहे हैं।
गेंद ईरान के पाले में है। जैसा कि कहावत है, गुंडाई को हराने का सबसे अच्छा तरीका गुंडाई शुरू करना है।
देखिए बहराम साहब, ये बात तो नहीं मान सकते आपकी हम कि गुंडे को हराने का सबसे अच्छा तरीका गुंडे ही शुरू करना है। नहीं, आप अपने स्टैंड पर बाकी रहिए, उसी पे कायम रहिए और अपने इरादे को मजबूत रखिए। किसी गुंडे के सामने यानी किसी सुपर पावर के सामने घुटने ना टेकिए, लेकिन हक पे रहिए। गुंडे ही ना कीजिए लेकिन सच्चाई का साथ दीजिए, तो आपके काम अपने आप हल हो जाते हैं। आज ईरान जो पूरी दुनिया में सुरखरू है, जिसे कहा जाए कि सब उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसका कारण यही है कि ईरान कभी भी अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटा। उसका स्टैंड कभी कुछ ख़राब नहीं था, इसलिए आज भी लोग उसको मानने के लिए तैयार हैं। ईरान के स्टैंड को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। जी दीदी, क्या हमारे पास समय बचा है अभी कुछ आगे जाने के लिए?
समय तो है, लेकिन आज ये सांस्कृतिक खबर ने हमारा बहुत समय ले लिया। अब जाते हैं फिर अपने श्रोताओं की तरफ, और एक श्रोता जो है धीरज प्रजापति प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, उनकी बातचीत सुनते हैं।
नमस्कार, मैं धीरज प्रजापति। ईरान रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो हमको माय फ्रेंड ग्रुप से रूबरू हो कराते रहते हैं। हमारे और भी जो जुड़े हुए हैं वो सभी सुनते हैं आपके न्यूज़ को और आपके समाचार को जो भेजते हैं, और बहुत अच्छा है ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहें और हम भी आपको अपने संदेशों के जरिए आपसे जुड़े रहेंगे। कोई भी एक अलग नहीं है, सब एक हैं, एक राष्ट्र है, एक देश है, सारा कुछ सब एक जैसा है, सबको एक जुटता बना के रखनी चाहिए, ना कि आए दिनों जैसे ये अभी पंजाब में घटना हुआ है गुरुद्वारे में दो, और इधर पाकिस्तान में है, इधर जगह जगह पे होता है, इनको समाप्त करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें अच्छी नहीं होती है, क्योंकि सबको एक दिन नहीं तो एक दिन सबको अपने यहाँ पे नहीं रहना है, दूसरी जगह को चल जाना है। किसी को पता नहीं कौन कहाँ जाएगा, क्या रूप लेगा, कैसा रहेगा, मगर शांति बना के रखें और सब एकजुटता रखें तो अच्छा रहेगा। हालांकि एक लोग एकजुटता भी क्यों रखेंगे बना के, क्योंकि वो तो इसी में ही अपना टाइम व्यर्थ करना चाहते हैं कि एक दूसरे से लड़ाई करो, उसका ज़मीन जायदाद या उसकी बॉर्डर को अपने हैसियत में रखो, अपने उसमें करो, तो ये देखो अच्छा नहीं होता है। सभी को सोचना चाहिए, हमारे से छोटे बड़े जो साथी हैं, या हमारे जो वुमेंस के लिए बोला जाता है कि अभी हमारे भारत में कर्नाटक में कांग्रेस के एक नेता ने बोला, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो ये असर बहुत पड़ता है, अपने देश की सभ्यता को नुकसान पहुँचाया जाता है और ये चीज़ें अच्छा नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद
जी। धीरज प्रजापति जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकालकर हम तक अपना संदेश, महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाया, और आपकी बात काफ़ी हद तक हम समर्थन भी करते हैं उसका। और ये बात सही है कि महिलाओं को जो है उनका अधिकार उन तक उनको मिलना चाहिए, उनको इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो क्या पहने और क्या नहीं पहने, लेकिन ये है कि किस समाज में रह रही हैं, कहाँ रह रही हैं, किस तरह का उनको अंदाज़ अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए। कर्नाटक का भी आपने उल्लेख किया, कर्नाटक में जो तमाम विवाद हैं उसकी तरफ हम नहीं जाना चाहते हैं, कि हमारा कार्यक्रम जो है वो ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर हम राजनीतिक चर्चा करें, लेकिन फिर भी ये ज़रूर कहेंगे कि हिजाब जो है वो महिलाओं की खूबसूरती का प्रतीक है, तो हिजाब पहनेंगी तो अपनी खूबसूरती को और ज़्यादा चार चांद लगाएंगी। क्या कहती हैं दीदी आप?
जी बिल्कुल सही कहा आपने। और भैया मैं आप अभी ये कहना चाह रही हूँ कि अभी हमारे पास समय ख़त्म हो गया है, इस बार हम लोगों ने बहुत ही कम कमेंट्स दिए हैं, लेकिन फिर भी अगली बार हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स।
तो अगर हमारे पास समय नहीं है तो हम जो है वो अपने प्रिय श्रोताओं से विदाई लेते हैं और आज्ञा चाहते हैं अगले कार्यक्रम तक के लिए। अपने भैया रवीश जैदी और दीदी मरियम मेहरदादी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ ریڈیو تہران سچائی اور ان سب کی آواز جن کی آواز کوئی نہیں سناتا۔ تازہ سماچاروں اور سٹیک سمیکشاؤں کے لیے ہم سے جڑیے اور ہمیشہ جڑے رہیے۔ اور اب ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کا اگلا کارکرم۔ وگیان کی ڈگر۔
دوستو، کارکرم وگیان کی ڈگر کے کرنے کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں مریم مہر دادی اور غائم رضوی کا سلام سویکار کیجیے۔ آج کے کارکرم میں ہم گیان وگیان کے ایک کھیتر میں دنیا میں ہونے والی پرگتی اور منوروگ کے وشے پر چرچا کریں گے۔
دوستو، سن 2017 میں پہلی بار اسلامی گڑتنتر ایران ویگیانک اتپادن یا ویگیانک اوشکار کی دشٹی سے مسلم دیشوں میں پہلے استھان پر تھا۔ گیان وگیان کے کھیتر میں کام کرنے والی ویگیانک ویب سائٹ نے مسلم دیشوں کے بیچ ایران کو پہلے نمبر پر قرار دیا تھا، لیکن WOS نامک ویب سائٹ نے حالیہ ورشوں کے دوران ترکی کو پہلے نمبر پر قرار دیا اور ایران کو دوسرا درجہ دیا، جبکہ ایران سن 2017 میں پہلا استھان حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ورتمان سمے میں اسکوپس ادب ڈیٹا بیس اور WOS ویب سائٹ دونوں کی نظر میں ایران نے اپنا انتراشٹریہ درجہ برقرار رکھا ہے۔
اسلامی وشو وگیان پرشستی پتر ڈیٹا بیس کے پرمکھ کے کتھنانوسار ورش 2017 میں قزاقستان میں اسلامی دیشوں کے وگیان اور تکنیکی منتریوں اور پرمکھوں کی اپستھتی سے اسلامی دیشوں کے وگیان اور تکنیک کے پاس ہونے والے 10 ورشیہ کارکرم کے آدھار پر اگلے 10 ورشوں کے دوران مسلم دیشوں کے ویگیانک اتپادوں کا استر کو 2 گنا بڑھا دے گا۔ ورتمان سمے میں دنیا کے ویگیانک اتپادوں اور آوشکاروں میں مسلم دیشوں کا حصہ 8% ہے اور یہ اگلے 10 ورش میں بڑھ کر 16% تک ہو جائے گا۔ امریکہ، فرانس، برٹین، جرمنی، چین، کینیڈا، آسٹریلیا ان 7 دیشوں میں ہیں جنہوں نے ورش 2013 سے 2017 کے بیچ کے ورشوں میں مسلم دیشوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ویگیانک سہیوگ کیا ہے۔
امریکہ کے میساچیوسٹ راج کی وارسیسٹر پولیٹیکنک سنستھا کی میکینیکل انجینئرنگ گروپ کے شوت کرتاؤں نے ایرانی شوت کرتا کے نیتت میں نیا الیکٹریکل کولنگ سسٹم بنانے میں کامیابی حاصل کی ہے، جس میں کوئی ایسا پرزا نہیں لگا ہے جو گھومتا رہتا ہو۔ ناسا کی اور سے انترکش یاتری کو منگل گرہ میں بھیجنے کے معاملے میں یہ چیز مدد کر سکتی ہے، کیونکہ انترکش یاتریوں کے آس پاس کے ماحول کو ٹھنڈا رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی چنتا کو دور کرنے کے لیے ویگیانکوں نے یہ اوشکار کیا ہے۔
انترکش یاتریوں کے لیے سب سے خطرناک چیز گرمی ہوتی ہے، اور یہ چیز ہمارے انترکش یاتریوں کے لیے سمسیائیں پیدا کرتی ہیں۔ دھرتی سے باہر کا حصہ بہت ہی ٹھنڈا ہوتا ہے، اور جب انترکش یاتری کا سامنا سورج کی گرمی سے ہوتا ہے تو وہ اچانک بہت ہی زیادہ گرم ہو جاتا ہے، اور اس کی گرمی 100 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ انترکش یاتری جہاں پر ہیں وہاں کا تاپمان سامان ہو، यहाँ तक कि अंतरिक्ष यात्री का शरीर गर्मी पैदा करता है और अंतरिक्ष के हालात की वजह से ये सारी चीज़ें कारण बनती हैं कि गर्मी स्थानांतरित नहीं हो पाती और गर्मी का भंडार बाद में समस्याएं पैदा कर सकता है। जमाल याकूबी का कहना है कि इस सिस्टम का 2017 में सफलता के साथ परीक्षण किया गया और तय ये है कि 2021 या 2022 में इसको और भी विकसित किया जाएगा और $10 मिलियन खर्च करके इसको बनाया जाएगा।
अंतरिक्ष की सैर का सपना तो हम में से बहुत से लोग देखते हैं, लेकिन अंतरिक्ष यात्री बनना आसान काम नहीं है। मसलन आपकी सेहत आम लोगों के मुकाबले ज्यादा बेहतर होनी चाहिए। दबाव होने के बावजूद आपका जहनी सुकून डगमगाना नहीं चाहिए। एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए ये चंद बुनियादी बातें हैं जिन्हें द राइट स्टफ कहा जाता है। जमीन पर हम ऑक्सीजन के गिलाफ में रहते हैं, इसके बिना इंसानी वजूद की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन धरती से दूर अंतरिक्ष में रहने वाले बनावटी सांसों के सहारे जीते हैं। उन्हें ब्रह्मांड में मौजूद रेडिएशन झेलना पड़ता है, इसका सीधा असर उनकी सेहत पर पड़ता है। शरीर कमजोर पड़ने लगता है, हर समय मतली महसूस होती रहती है, आंखें कमजोर हो जाती हैं और कमजोरी इतनी बढ़ जाती है कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी नहीं रहती। अंतरिक्ष यात्री ल्यूका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में करीब 5.5 महीने रहे। वे कहते हैं कि जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं आपकी टांगें खुद आपको ही कमजोर और पतली महसूस होने लगती हैं, चेहरा गोल होने लगता है। वापस धरती पर आने के बाद भी नॉर्मल होने में काफी समय लग जाता है।
अंतरिक्ष में शुरुआत के दिनों में एक ही दिशा में चलना पड़ता है। 6 महीने के बाद आप धीरे धीरे दूसरी दिशाओं में घूमना शुरू कर देते हैं, स्पेस स्टेशन की जगह को पहचानना शुरू करते हैं। जीरो गुरुत्वाकर्षण की वजह से अंतरिक्ष यात्री हवा में ही झूलते रहते हैं, लिहाजा आपकी टांगों का कोई काम नहीं रहता। अंतरिक्ष में बहुत लंबे समय तक टिक पाना आसान नहीं है।
अंतरिक्ष में जिस तरह की बस्तियां बसाने की बात की जा रही है वो सुनने में तो सहज लगता है, लेकिन असल में इसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। मिसाल के लिए, अगर आज किसी नौजवान को ऐसी किसी कॉलोनी में भेजा जाएगा तो उसकी आने वाली पीढ़ी धरती पर रहने लायक रह नहीं जाएगी। उसका शरीर अंतरिक्ष के माहौल के मुताबिक ही ढल जाएगा, उसकी ज़िंदगी धरती पर रहने वालों से जुदा होगी। अंतरिक्ष के लिए इंसानों की नई नस्ल तैयार करना आसान काम नहीं है, लिहाजा बेहतर है कि धरती पर ही इंसानों को अंतरिक्ष के लिए तैयार किया जाए। हालांकि ऐसी दुनिया का ख्याल दिलचस्प है जिसमें इंसान हवा में तैरते रहें। फिल्मों में हम ऐसी दुनिया देख चुके हैं, पर इन्हें हकीकत का जामा पहनाना फिलहाल तो मुमकिन नहीं है। दोस्तों, अब हम मनोरोग के विषय पर चर्चा करेंगे।
दोस्तों, मनोविकार या मेंटल डिसऑर्डर किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य की वो स्थिति है जिसे किसी स्वस्थ व्यक्ति से तुलना करने पर सामान्य नहीं कहा जाता। स्वस्थ व्यक्तियों की तुलना में मनोरोगों से ग्रस्त व्यक्तियों का व्यवहार असामान्य अथवा दूरनुकुली मेल एडेप्टिव निर्धारित किया जाता है, और जिसमें महत्वपूर्ण व्यथा अथवा असमर्थता अंतर्ग्रस्त होती है। इन्हें मनोरोग, मानसिक रोग, मानसिक बीमारी अथवा मानसिक विकार भी कहते हैं।
दोस्तों, मनोरोग मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन की वजह से पैदा होता है। इसके उपचार के लिए मनोरोग चिकित्सा की जरूरत होती है। मनोविज्ञान में हमारे लिए असामान्य और अनुचित व्यवहारों को मनोविकार कहा जाता है। ये धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। मनोविकारों के बहुत से कारक हैं, जिनमें अनुवांशिकता, कमजोर व्यक्तित्व, सहनशीलता का अभाव, बाल्यावस्था के अनुभव, तनावपूर्ण परिस्थितियां आदि। ये वे स्थितियां हैं जिन्हें हल कर पाना एवं उनका सामना करना किसी व्यक्ति को मुश्किल लगता है। उन्हें तनाव के कारक कहते हैं। तनाव किसी व्यक्ति पर ऐसी आवश्यकताओं व मांगों को थोप देता है जिसे पूरा करना वो अति दूभर और मुश्किल समझता है। इन मांगों को पूरा करने में लगातार असफलता मिलने पर व्यक्ति में मानसिक तनाव पैदा हो जाता है।
आज के समय में तनाव लोगों के लिए बहुत ही सामान्य अनुभव बन चुका है, जो कि अधिसंघ के दैहिक और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं द्वारा व्यक्त होता है। तनाव की पारंपरिक परिभाषा दैहिक प्रतिक्रिया पर केंद्रित है। हेंस शेले ने तनाव या स्ट्रेस शब्द को खोजा और इसकी परिभाषा शरीर की किसी भी आवश्यकता के आधार पर अनिश्चित प्रतिक्रिया के रूप में की। हेंस शेले की परिभाषा का आधार दैहिक है और ये हार्मोन्स की क्रियाओं को अधिक महत्व देती है जो एड्रेनल और अन्य ग्रंथियों द्वारा स्रवित होते हैं।
शेले ने दो प्रकार के तनावों की संकल्पना की है, उनमें से पहला यू स्ट्रेस तनाव और दूसरा विपत्ति अर्थात अतार्किक या अवांछित तनाव है। तनाव पर नवीन उपागम व्यक्ति को उपलब्ध समायोजी संसाधनों के संबंध में स्थिति के मूल्यांकन एवं व्याख्या की भूमिका पर केंद्रित है। अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति दैहिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक हित के नज़र से स्वयं को बनाए रखने के लिए अपने आसपास की स्थितियां एवं वातावरण को व्यवस्थित करता है।
दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दीजिए।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा और अब समय हो चुका है आज के मुख्य समाचारों के सारांश का। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी सेनाएं दाखिल हो गई हैं। ईरान और रूस के राष्ट्रपतियों की टेलीफोनी वार्ता में अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि कीव को अकेला छोड़ दिया गया है और हिजाब विवाद के बाद अब सिख लड़की की पगड़ी उतारने को कहा गया है। तो इसी के साथ हमारी ये सभा यहीं पर समाप्त होती है। अख्तर अब्बास और साथियों को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।